हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन एंड बीबीटी फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की आनंद कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा मई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की कलिगोपावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंदी समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री गुरु एंड श्री गौरांग की निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम की चतुर्थ स्कंध से अध्याय क्रमांक 25। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक संख्या 43। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः ताम प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समाह। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्यसमयमिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदा ते शतं समः। नारद उवाच इति तौ दम्पती तत्र समुद्यसमयमिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदा ते शतं समः। नारद उवाच इति तौ दम्पती तत्र समुद्यसमयमिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदा ते शतं समः। माताजी इति तौ दम्पती तत्र समुद्यसमयमिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदा ते शतं समः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की नारदः उवाच। नारद ने कहा इति इस प्रकार तौ वे दोनों दंपति पति तथा पत्नी तत्र वहां समुद्य समान रूप से उत्साही समयम स्वीकार करते हुए मिथः परस्पर ताम उस स्थान में प्रविश्य प्रवेश करके पुरीम नगरी में राजन हे राजा मुमुदाते जीवन का भोग किया शतम 100 समाहा वर्ष। अनुवाद नारद मुनि ने आगे कहा हे राजन वे दोनों स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। तात्पर्य इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। सूर्य के दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की यह अवधि भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोकों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न हो सकती है। ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साघ्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भागवतम के चतुर्थ स्कंध में शुरुआत के 7-8 अध्याय उसमें एक स्त्री के बारे में वर्णन हुआ है, सती और शिवजी और प्रजापति दक्ष। और उसके बाद आगे 4-5 अध्याय में एक बालक के बारे में वर्णन हुआ है, कौन? ध्रुव महाराज। और उसके बाद आगे 10-11 अध्याय एक प्रौढ़ व्यक्ति के बारे में वर्णन हुआ है, कौन? पृथु महाराज। और उसके बाद ये आखिरी के 8-9 अध्याय है, इसमें एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है, वो है राजा प्राचीनी भरीश। तो इसमें चारों स्तर के या चारों आयु के लोगों के बारे में भागवतम में चतुर्थ ये स्कंध में वर्णन है। तो विशेष करके नारद मुनि इसमें या भागवतम में अलग अलग जगह उनके बारे में वर्णन आता है, तो उनके अलग अलग प्रकार के शिष्य हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल से लेकर बहुत सामान्य शिष्य भी है। तो जैसे पहले स्कंध में वर्णन आता है, व्यासदेव इतने बुद्धिमान शिष्य, इतने सारे श्लोकों की उन्होंने रचना की, ये साहित्य का निर्माण किया वैदिक साहित्य का, तो ऐसे व्यक्ति को भी नारद मुनि मार्गदर्शन करते और उनको उपदेश देते वक्त सिर्फ कहते हैं कि आपने भगवान की सफिशिएंटली और स्पेसिफिकली प्रचुर मात्रा में और केवल उनकी ही स्तुति हो ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए आपके जीवन में संतुष्टि नहीं महसूस हो रही। और फिर आगे जाकर व्यासदेव जी के अन्य भी शिष्य ध्रुव महाराज, एक बालक और एक शिकारी मृगारी, तो उसको प्रचार करते वक्त उन्होंने कुछ अलग शब्द कहे। और फिर चित्रकेतु महाराज को उपदेश देते वक्त उसकी भौतिक इच्छा पूरी की, और बाद में हरियश्वास और शवलाश्वास, ये जो यूथ थे, यूथ प्रीचिंग भी किया, बच्चों को भी प्रीचिंग किया, तो सभी प्रकार के लोगों को उन्होंने प्रचार किया। और इस प्रसंग में अभी एक बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को प्रचार करना है, तो जिसके लाइफ में व्यूज बहुत रिजिड बन गए, उसके प्रिंसिपल्स या रवैया बहुत फिक्स हुआ है उसका, तो ऐसे व्यक्ति को प्रचार करके वापस उसकी संकल्पना बदलना, उसके कंसेप्ट बदलना, और ये कर्मकांड जो कर रहा था, वो बहुत सारी यज्ञों का आयोजन कर कर उसी में व्यस्त रहता था, तो वो सब व्यस्तता उसकी बंद कर कर भक्तिमय कार्य में समय देना, तो ये कार्य करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति की आयु 50-60 के ऊपर हो जाती है तो उसके प्रिंसिपल्स बदलना बहुत मुश्किल है। और विशेष करके राजा को, ये प्राचीनी भरिषद राजा, तो उसके व्यूज बदलने के लिए अभी नारद मुनि एक कथा बता रहा है कि जो वास्तव में हुई नहीं, लेकिन ये कथा बताकर ये
ये राजा का मन का परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर नारद मुनि की एक विशेष विशेष स्किल या कुशलता हम देखते हैं कि कौन से व्यक्ति को क्या बात कहनी है जिसके द्वारा वो भगवान की भक्ति में लग जाए। तो यहां पर एक काल्पनिक कथा भी बताते हैं, लेकिन उसके उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उद्देश्य है कि वो व्यक्ति भक्ति करने में प्रवृत्त हो जाए। तो एक तरफ ऐसा बताया गया कि भक्त केवल सत्य ही कहता है, सत्यम परम धीमही, उसका ध्यान भी परम सत्य भगवान के ऊपर रहता है और वो जो भी कहता है वो भी सत्य ही कहता है। लेकिन यहां पर ये काल्पनिक कथा बताई है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि अल्टीमेटली वो व्यक्ति सत्य के तरफ आए, तो एंड रिजल्ट देखना चाहिए। तो बीच का इंस्ट्रूमेंट या टूल अलग हो सकता है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट व्यक्ति सत्य के पथ पर ही चलेगा। तो ये रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये कथा प्रारंभ की है। तो जो कथा राजा रिलेट कर सके ऐसी ही बात वो कह रहे हैं। तो यहां पर नारद मुनि की एक विशेषता है कि अलग अलग लोगों को वो प्रचार करते हैं, तो नारद मुनि इनके सबके चित्त के बारे में विचार करते हैं। तो भगवद गीता में भी या भगवान स्वयं कई जगहों पर उन्होंने चित्त की बात कही है, मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यसि, या अन्य भी श्लोक है, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। तो ये अलग अलग व्यक्तियों का चित्त भगवान में लगे तो ये उनका कंसर्न है। ये प्राचीन बरिषद राजा, अभी वो अगर मेरा शिष्य बनता है तो उसका वित्त भी मुझे मिलेगा जैसा भाव नहीं है। नारद मुनि राजा के चित्त में इंटरेस्टेड है, उसके वित्त में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक सुभाषित है जिसमें कहा है, गुरवः सन्ति बहवः शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभः स गुरोर्लोके शिष्य चित्तापहारकः। तो बहुत सारे गुरु है, गुरवः सन्ति बहवः शिष्य वित्त अपहारकः, शिष्य का वित्त अपहरण करने वाले बहुत सारे गुरु हैं। दुर्लभः स गुरुर्लोके, तो इस लोक में ऐसा गुरु बहुत दुर्लभ है जो शिष्य चित्त अपहारक हा, शिष्य का चित्त अपहरण करने का जो स्किल है वो नारद मुनि से हम सीख सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उपदेश उपाख्यान उसमें भी बहुत सारी कथाएं लिखते हो, तो वो सभी कथा रियल ही है, ऐसा नहीं है जैसे बीबी और एमए, इतने लेजी लोग थे वो दोनों। तो जब घर को आग लग गई तो एक, दोनों सो रहे थे और एक को जरा आग महसूस हो गई, तो उसने कहा कि कुछ तो गर्मी महसूस हो रही है, तो दूसरा बोलता है कि बी ए सॉरी मूव असाइड, एम ए मूव असाइड, और फिर पहला उत्तर देता है बीबी बर्निंग बैक, बर्निंग बैक एंड मूव असाइड। तो ये भी काल्पनिक कथा है। या जो चातक पक्षी केवल विशेष नक्षत्र का बारिश का बूंद ही पीता है, उसी के लिए इंतजार करता है वो, तो ये रियलिटी में चातक पक्षी है क्या, किसी ने देखा है वो पक्षी को? लेकिन कंसेप्ट क्या है कि भक्त ने कितना आतुर रहना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कितना आतुर रहना चाहिए, इसलिए ये काल्पनिक पक्षी भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वो डेस्परेट भाव कितना महत्वपूर्ण है वो बताया है। रियल है ओके ओके। तो विशेष करके ये भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जो भी कथाएं कही है तो उसका उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ कर हम परम सत्य की नजदीक आए। तो ये सब ऐसा काल्पनिक कथाएं बताना, ये उच्च कोटि की भक्ति ही कर सकते हैं। हमारे स्तर पर जो रियल कथाएं हैं या जो शास्त्र में बताई है वही हम रिपीट करना सेफ साइड है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और नारद मुनि जैसे उच्च कोटि के भक्त ही ये कुछ काल्पनिक कथा या ऐसे एलिगोरिकल स्टोरी बता सकते हैं। तो इधर ये प्रसंग में नारद मुनि वैरागी होते हुए भी एक स्त्री के सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं, स्त्री के अलग अलग शरीरों के पार्ट के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कोई ऊपर ऊपर सोचेगा तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें इंद्रिय संयमन के बारे में हमको पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए, लेकिन इसमें नारद मुनि एक स्त्री के बारे में वर्णन कर रहे हैं और वो भी कई श्लोकों में, 8-10 श्लोकों में। तो ऊपर ऊपर विचार करेंगे तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार व्यक्ति समुद्र में ऊपर ऊपर ही समुद्र से कुछ चीजें पाने का प्रयास करता है तो दो चीजें उसको मिलती है, एक तो वो वेव्स के कारण बहुत अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, बहुत परेशानी होती है, और दूसरे इतनी परेशानी झेलने के बाद उसको क्या मिलते हैं, केवल मछलियां मिलती है जो किलो के भाव में बिक जाती है और फ्यू हंड्रेड्स रुपीज उसको मिलते होंगे। लेकिन जो व्यक्ति जरा समुद्र के बीच में गहराई में जाकर जरा डाइव करके फिर कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढने का प्रयास करता है तो उसको मोती मिलती है। तो एक मोती का दाम क्या है और कई किलो मछली का दाम क्या है? तो कहने का तात्पर्य कि शास्त्रों को अगर ऊपर ऊपर ही पढ़ेंगे तो हमारी कुछ अलग ही धारणा हो जाएगी, लेकिन जरा गहराई से तो केवल व्यक्ति ये श्लोक ही पढ़ता जाएगा तो वो कुछ अलग ही इमेज करेगा नारद मुनि की। लेकिन आचार्यों के तात्पर्यों के साथ अगर पढ़ेंगे हम तो नारद मुनि की जो प्रतिमा है या गरिमा है, उनकी इमेज है, वो कुछ अलग होगी हमारे हृदय में। तो यहां पर नारद मुनि ये स्त्री का वर्णन कर रहे हैं, वो वास्तविक हम सब की बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। वो तो हम सब की बुद्धि कैसे अविद्या के प्रभाव के कारण बहुत जो श्रेयस्कर चीज नहीं है आत्मा के लिए, ऐसी बातें, ऐसी आइडियाज, ऐसे अलग अलग प्रलोभन आत्मा को प्रदान करती है। तो बुद्धि के बारे में आगे 7वें स्कंध में भी एक जगह श्लोक में वर्णन आता है कि जिसमें बुद्धि की तुलना सारथी से की गई है। तो एक दूसरे शास्त्र में भी है लेकिन भागवत में भी ये दो श्लोक है, आहु शरीर शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान अभीषुन मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्रा धिषणाम च सूतम सत्वम बृहद बंधुरम ईश सृष्टम। तो कहा गया है आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि, तो शरीर को रथ कहा गया है, और इंद्रियाणि हयान, इंद्रियों को हयान या घोड़ों से तुलना की गई है, और अभिशुन मन इंद्रियेशम, तो मन सभी इंद्रियों का ईश है, प्रमुख है। वर्तमानी मात्रा, और ये घोड़ों को चलने का जो रास्ता है वो है मात्रा या सेंस ऑब्जेक्ट्स। धिषणाम च सूतम, धिषणाम यानी बुद्धि, वो सूत है यानी सारथी है। सत्वम बृहत बंधुरम ईश सृष्टम, तो ये ऐसा सभी चीजों को बांध के रखने वाला ये कॉन्शियसनेस। सत्वम बृहत, तो इतना बड़ा है कि सभी चीजों को इकट्ठा रखता है, तो ये भगवान की ऐसी सृष्टि है, बंधुरम ईश सृष्टम। और आगे वर्णन आता है, अक्षम दश प्राणम अधर्म धर्मो चक्रे अभिमानम रथिनम च जीवम धनुर्हि तस्य प्रणवम पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्षम। तो अक्षम, तो ये रथ के जो पहिए हैं, तो उसके सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाने वाले जो स्पोक से आ रहे रहते हो वो 10 है। अक्षम दश प्राणम अधर्म धर्मो। तो ये क्या है, धर्म और अधर्म, ये दो व्हील्स हैं, चक्र हैं, और ये व्हील के जो स्पोक्स हैं वो दश प्राण हैं। तो प्राण अपान व्यान उदान समान, और भी पांच प्रकार के हैं, तो दस प्रकार के प्राण या दस स्पोक्स हैं। चक्रे अभिमानम रथिनम च जीवम। तो ये रथ का रथी वो क्या है, अभिमानम अहंकार, और जीवम धनुर ही, और जीव एक्चुअली धनुष है, और तस्य प्रणवम पठंती। तो ये ओंकार का उच्चारण करता है, और शरम तु जीवम, तो इसमें जीवम ये दो बार आया है, तो जीवम धनुर ही, तो धनुष और वो बाण, ये दोनों की तुलना जीव से की है, और ये छोड़ना है ये बाण को कहां, परमेव लक्ष्यम, तो परमात्मा या परम भगवान के चरणों में इसको पहुंचाना है, ये लक्ष्य है। तो यहां पर बुद्धि की तुलना सारथी से की है, लेकिन यहां इस प्रसंग में अभी बुद्धि की तुलना एक स्त्री से नारद मुनि करते हैं। तो ये स्त्री हमारे हरेक के जीवन में ऐसे उसकी आयु 12-13 वर्ष होने के बाद, टीनेज अवस्था आने के बाद अचानक ये भोग करने की इच्छा जागृत होना, तो उसकी तुलना ये राजा के जीवन में, पुरंजन राजा के जीवन में अचानक वो स्त्री के आने के समान तुलना की है। तो ये पुरंजन राजा ये स्त्री को देखता है, उसको अनेक अनेक प्रश्न करता है वो। तो जो जो प्रश्न राजा ने पूछे थे उसी क्रम में ये स्त्री भी उत्तर देती है। तो एक प्रश्न था कि तुम किसकी कन्या हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये श्लोक क्रमांक 35 या 36 में, तो इसमें वो स्त्री बताती है, हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में, हम यह नहीं जानते इस स्थान में है, हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने के लिए किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। तो उसके पहले ये युवती कहती है, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, नहीं मैं अपने या दूसरों के गोत्र के नामों को जानती हूं। तो ऐसा बिना क्रिएटर के जानकारी के ये स्त्री और ये पुरुष ये दोनों मिलते हैं, और ये स्त्री भी बहुत स्तुति करती है ये पुरुष की। और फिर अभी इस श्लोक में, आज के श्लोक में नारद मुनि आगे वर्णन कर रहे हैं 43 श्लोक में कि इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयम मिथः। तो इस प्रकार तौ यानी कि ये दोनों दंपति पति पत्नी, तो समुद्य समयम उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि हम अभी विवाहबद्ध हो जाएंगे और विवाह के बाद एक ही घर में रहने लगेंगे। तो ताम प्रविश्य पुरीम राजन, तो राजन ये शब्द नारद मुनि संबोधित कर रहे हैं किसको, प्राचीनी भरीषत को। तो हे राजन, वो दोनों ने आपस में समर्थन किया और फिर वो दोनों वो पुरी में प्रवेश करते हैं, और फिर मुमुदाते यानी वो उन्होंने भोग किया शतम समाहा। तो शतम यानी कि 100 और समाहा यानी कि वर्ष। तो भगवद गीता में भी एक जगह ये शब्द आता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती ही समाहा। तो शाश्वती ही यानी कि बहुत वर्षों तक ये योग भ्रष्ट योगी पहले स्वर्ग लोक में जाता है और उधर बहुत वर्षों तक रहता है, और उसके बाद शुचिनाम श्रीमताम के ही योग भ्रष्टो भी जायते। तो इधर वही शब्द है शतम समाहा, तो 100 वर्षों तक ये दोनों ये शरीर में ये मानव शरीर में रहने लगे। तो पुरिम और शरीर, तो ये शरीर की तुलना नवद्वारपुर से की गई है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये 100 वर्ष यानी अलग अलग लोक में 100 वर्ष की जो अवधि है वो अलग अलग है। तो इसके लिए रविंद्र स्वरूप प्रभु ने एक आर्टिकल लिखा है, कंसीविंग द इनकंसीवेबल। तो जो आध्यात्मिक जगत में समय बहता ही नहीं है, टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स अब्सेंस, ये कंसीव करने के लिए बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, उसको भी कैसे हम कंसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं। एक ट्रायंगल, एक त्रिकोण जिसका बेस नीचे है और अपेक्स ऊपर है। तो अगर बेस पकड़ा जाए कि ये पृथ्वी लोक का समय 365 days इक्वल टू 365 days, लेकिन जरा ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के 365 days ऊपर के लोगों के कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। स्वर्ग लोक में उधर इधर के 6 महीने इक्वल टू उधर का 1 दिन, तो 1 साल अगर 365 days पृथ्वी के पकड़ेंगे तो स्वर्गलोक के 2 दिन हो जाएंगे, और स्वर्गलोक से भी ऊपर जाएंगे तो 365 days ऑफ अर्थ उधर 1 दिन हो जाएगा, और ब्रह्मलोक में जाएंगे तो उधर 365 days अर्थ के उधर कुछ मिनट या घंटे हो जाएंगे, और जरा और भी ऊपर जाएंगे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, तो जरा और भी ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के 365 days स्पिरिचुअल वर्ल्ड का टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति, यानी वो ट्रायंगल का अपेक्स है। तो इस दुनिया में ये जो समय का बहना है ये रिलेटिव है। प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिखते हैं, विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनकी जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। तो इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आल्सो डिफर। तो स्वर्गलोक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पृथ्वीलोक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदल जाता है। तो ये 100 वर्ष के बारे में एक अन्य जगह पर भी चर्चा आती है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश देते वक्त बताते कि व्यक्ति अपने ये 100 साल कैसे बीतता है। तो यहां तो केवल अभी नारद मुनि शुरुआत कर रहे हैं, ये दोनों बहुत हैप्पीली एकत्र आ गए और एक घर में रहने लगे, एक पुरी में रहने लगे, लेकिन आगे क्या क्या होगा, आगे उनको रोना धोना भी होगा, तो वो भी बात आगे वो बताएंगे। लेकिन अभी ये प्रहलाद महाराज जो बताते हैं कि व्यक्ति अपने 100 ईयर्स कैसे बिताता है, तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में 6वें अध्याय में 6 श्लोक नंबर 6 to 10, तो उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुंसो वर्ष शतम ह्यायुस तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यदसो रात्र्याम शीतेन्धम प्रापतिस्तमः। तो मनुष्य पुंसः वर्ष शतम ही आयुष, तो उसके 100 साल, उसके 100 साल में से अर्धम च अजितात्मनः, तो जिसके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है ऐसा व्यक्ति, निष्फलम यद असो रात्र्याम, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं ऐसा व्यक्ति अर्ध यानी 50 साल उसके तमोगुण से प्रभावित नींद इत्यादि कार्यों में चले जाते हैं। 7-8 घंटा नींद और बाकी भी विचार कुछ घंटे दिन के तमोगुण से प्रभावित होते हैं, तो 100 वर्षों में से 50 वर्ष उसके ऐसे ही निकल जाते हैं। आगे, मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरया ग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति। तो उसके मुग्धस्य बाले, बाल्यावस्था में वो मुग्ध रहता है, या अज्ञान में ही रहता है, उसको वास्तव ज्ञान क्या है उसको पता नहीं रहता। तो वो और कौमारे क्रीडतो, तो कौमार अवस्था यानी कि जरा 20 के पहले पहले, 11 to 20, फर्स्ट टू 10 में कुछ ज्ञान अज्ञान कुछ पता नहीं चलता, और 11 से 20 खेलकूद में ही उसके साल निकल जाते, तो दोनों मिलकर 20 साल उसके बाल्यावस्था के और कुमार अवस्था के निकल जाते हैं। आगे जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति, तो बुढ़ापे में जरया ग्रस्त देहस्य, तो उसका देह ग्रस्त हो जाता है अलग अलग बीमारियों के द्वारा, और उन बीमारियों में वो सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका बुद्धि वो लगा नहीं पाता आध्यात्मिक चीजों के बारे में, तो ऐसे 20 वर्ष निकल जाते हैं। तो 50 तमोगुण में गए, 20 बाल्यावस्था कुमारावस्था में गए, और 20 बुढ़ापे में गए, कितने वर्ष बीत गए, 90 वर्ष चले गए। बचे हुए 10 वर्ष दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। तो वो बचे हुए 10 साल दुरापुरेण कामेन, ऐसी कामनाएं कि जो पूरा करना बहुत ही कठिन है, दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा, और इतने बलशाली मोह के अलग अलग चीजें उसके जीवन में आ जाती है कि वो बचे हुए 10 साल भी वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता, और उसकी जिंदगी ऐसे ही शेषम गृहेषु सक्तस्य, अलग अलग आसक्तियों में उसका मन इतना अटका रहता है कि वो जो उसके आत्मा के भलाई की चीजें है उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं। प्रमत्तस्य अपयाति ही, तो ऐसा प्रमत्त व्यक्ति उसके 100 साल ऐसे ही गंवा देता है। तो एक जगह मैंने एक कोट पढ़ा कि आजकल लोग धनवान बनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो उधर धनवान बनने के लिए एक एक कण जोड़ना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण जोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत कण और क्षण, तो कैसा समय बीत रहा है, तो इसके बारे में अगर व्यक्ति सतर्क नहीं रहेगा तो वो गुणवान बनने के लिए कभी पात्र नहीं बन सकता। तो ये नारद मुनि के उपदेशों के द्वारा हम अगर सही में ये गुणवान बनने के बारे में गंभीर है, तो बुद्धि के बारे में पॉजिटिव चीजें भगवद्गीता में भगवान ने विशेष करके दूसरे अध्याय में बहुत कही है, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या क्या है, तो 2.55 से लेकर 72 तक करीबन 15-16 श्लोक है वो, तो उसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बर्ताव कैसे है। लेकिन अभी निगेटिव चीजें, स्थित प्रज्ञ अगर वो व्यक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि बहुत अविद्या से प्रभावित है, तो उसका बर्ताव कैसे है, तो वो ज्यादा भगवान ने गीता में बताया नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त नारद मुनि वो एक रोल ले रहे और एक वैरागी होते हुए भी ऐसा वर्णन कर रहे हो, ये ऐसा ऊपर ऊपर लगता है वो बहुत इंद्रियों को एजिटेट करने वाला है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य है कि हमारी बुद्धि ऐसे ये अविद्या के प्रभाव से हमको प्रभावित होने नहीं देनी है, और हमें प्रेयस के लिए बुद्धि का उपयोग करना है, तो सॉरी बुद्धि का उपयोग श्रेयस के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो एक आखिरी पॉइंट, तो ये पुरंजन और पुरंजनी यानी ये बुद्धि और आत्मा, ये दोनों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो ये इससे क्या चीजें हमें नहीं करनी है। तो जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो उसको ये चीज तुम करो, डूज, या योगाभ्यास में भी यम और नियम उसमें भी ये चीज मत करो, ये चीज करो, तो ये दोनों बातें बताई जाती है। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, हमेशा स्मरण करो और उनको कभी भी भूलो मत। तो ये दोनों बातें बताना बहुत आवश्यक है। तो हम भी आध्यात्मिक स्तर पर मरीज हैं और भगवान परफेक्ट डॉक्टर है, या भगवान उनके प्रतिनिधि नारद मुनि के द्वारा हमारी बुद्धि के द्वारा क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो डोंट्स यहाँ पर वो ये पुरंजन के उपाख्यान के द्वारा बता रहे हैं। तो इसके आगे वर्णन आएगा कि ये दोनों में शुरुआत में बहुत आनंद लगा लेकिन बाद में बहुत दुख भी हुआ। तो जैसे ये स्त्री का गोत्र या उसके माता पिता कौन है, निर्माता कौन है, वो जाने बिना ही दोनों एकत्र आ गए। तो आजकल वैसा ही हो रहा है कि लड़का लड़की उनके पीछे क्या वर्ण क्या है, गोत्र क्या है, वो बिना देखे एकत्र आते, शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन बाद में बहुत समस्याएं भी आती हैं। तो उस वही प्रकार का वर्णन आगे भी कुछ 10-15 श्लोकों में है, तो आगे के स्पीकर्स इसके बारे में बताएंगे। तो हम इधर ही रुकते हैं, किसी को कोई कमेंट या रिमार्क या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नव लास्य परम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। नव प्रेमयुतं नव नितशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसम्। नवधा विलसत शुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरि भक्ति परं हरि नामधरं करजाप्यकरं हरि नाम परम्। नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। सततं जनता भव तापहरं परमार्थ परायण लोकगतिम्। नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। నిజ భక్తి కరం ప్రియ చారుతరం నటనర్తన నాగర రాజకులం నిజ భక్తి కులకామిని మానసలాస్య కరం ప్రణమామి సచేసుత గౌరవరం కర్తాలవలం కల కంఠరవం మృదువాద్య సువేణికయా మధురం నిజ భక్తి గుణావృత నాట్యకరం ప్రణమామి శచీసుత గౌరవరం యుగధర్మయుతం పునర్నందసుతం ధరణీషు చిత్రం భవ భావోచితం తను ధ్యానచితం నిజవాసయుతం ప్రణమామి శచీసుత గౌరవరం అరుణం నయనం చరణం వసనం వదనే స్ఖలితం స్వకనామధరం కురుతే సురసం జగతా జీవనం ప్రణమామి శచీసుత గౌరవరం శచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి శచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి శచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి శచీసుత గౌరవరం
complexion is the hue of fresh cream tinged with kumkum. He is the ever fresh cupid who shoots arrows of newly blossoming flowers. He bears newer and newer modes of emotional ecstasies. He is fond of performing novel dances. He makes ever new jokes that causes much laughter. His brilliant luster is like freshly cast gold. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Is endowed with ever fresh love of Godhead. His radiant luster is like the color of fresh butter. His fresh attire is arranged in ever new fashions. He relishes ever new mellows of love for Krishna. He shines in ninefold new ways while executing the ninefold processes of devotion. is permeated with a most auspicious loving nature. I bow down to Gaura, beautiful son of Mother Sachi. He is absorbed in devotion to Sri Hari. He maintains the chanting of names of Hari. While chanting, he counts the holy names on the fingers of his hand. He is addicted to the name of Hari. He always has tears of love wailing in his eyes. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. He is always removing the suffering of material existence of mankind. He is the goal of life for persons who are dedicated to their supreme interest. He inspires men to become like honeybees, eager for the honey of Krishna Prem. He removes the burning fever of material world. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. He who motivates the pure devotion unto himself, who is most attractive to his beloved servitors. By his dramatic dancing, he exhibits the characteristics of the king of paramours. He causes the minds of beautiful young village women to dance. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. He plays kartals as his throat emits sweet melodious sounds, and the vibrant notes of the veena are softly played. He thus inspires the devotees to perform the dramatic dancing that is infused with the aspects of his own devotional service. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. He is accompanied by the Sankirtan movement, which is the religious practice of the age of Kali. He is the son of Nanda Maharaj, come again. He is the extraordinary brilliant ornament of the earth. His preaching mood is suitably adapted to the cycle of birth and death. His consciousness is fixed in the meditation of his own form of Krishna. He is always accompanied by his transcendental abode. I bow to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. His eyes, the sole of his feet, and his clothing are reddish like the color of that heralds the rising sun. As he utters his own names, his voice flatters. He awakens a sweet flavor to the life throughout the universe. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Shri Sachi Sitashtakam ki Jai. Gauranga Mahaprabhu ki Jai.